بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب دجال 3 جس کے مصنف ہیں مفتی ابو البابا شاہ منصور آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کتابوں سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کی معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے رابطہ کریں ہمارے نمبر 0321-213-8225. یہ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر www.qurtaba.org پر. اب ہم سنیں گے اس بک کا پارٹ 18. جب یہ پنج گوشہ ستارہ اوندھا ہو, اوندھا ہونے سے مراد ہے کہ اس کی پانچویں نوک بالکل نیچے کی طرف ہو, اس صورت میں خود بخود اس کی اوپر کی دو نوکیں بکرے کی سنگ کی شکل میں اوپر اٹھ جاتی ہیں, بکرے کے دو کان کی شکل میں دائیں اور بائیں مڑ جاتی ہیں اور پانچویں میں بکرے کی تھوڑی سما جاتی ہے. اس مخصوص حیات میں یہ شیطان کے چہرے کی شبی بن جاتی ہے اور شیطانی روحوں کو حاضر و غائب کرنے یا اندھیری کی طاقتوں سے مدد لینے میں اور طلسماتی کاموں میں مافوق الفطرت حرام تاثیر پیدا کر کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. سفلی جادوگروں کی سامری روایات کے مطابق جب اس کے گردائرہ کھینچا جائے تو یہ علامت عناصر اربع یعنی زمین, پانی, ہوا اور آگ کی نمائندگی کرتی ہے, جن کا ایک روح جنت سے نکالی بھی بدرو یعنی شیطان احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے. تب یہ مضبوط علامت میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کی پکڑ سے نکلنا ماہری روحانی شخصیات اور سفلی عالمی عاملین کے علاوہ مشکل ہوتا ہے. شیطان کے چیلے برائی کو علامتی طور پر ظاہر کرنے اور شیطان سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی ایک نوک نیچے رکھ کر استعمال کرتے ہیں, چاہے اس کے گرد دائرہ ہو یا نہ ہو. جبکہ عام لوگ جن کا شیطان کے چکر سے واسطہ نہیں, اس کی ایک نوک اوپر رکھ کر یا بغیر کسی خاص سمت میں رخ دیے اسے استعمال کرتے ہیں. نوک یا دائرے کے فلسفے کا انہیں علم نہیں ہوتا, وہ تو محض آرائشی علامت کے طور پر مختلف شکلوں میں سجاتے ہیں, انہیں اس میں مزمن متضاد حقیقت کی خبر ہی نہیں ہوتی. شیطان اور اس کے چیلوں کی ذلت اور رسوائی کی انتہا ملاحظہ کیجئے کہ اہل ایمان تو اللہ کی توحید اور بڑائی کے ڈنکے چوٹ پر بیان کرتے ہیں, تلواروں کے سائے تلے اور سینگوں کی نوک پر اس کی گواہی دیتے ہیں. شیطان کے پجاری اس کے برعکس چوری چھپے لوگوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اس کی علامت کو چور ضمیروں کی طرح پیچھے رہ کر پھیلاتے ہیں. ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے جھوٹے معبود کا کوئی وصف اگر حقیقی ہے تو اسے حق سمجھ کر حقیقت کی طرح کھل کر بیان کریں. ذلت بلکہ لعنت کی اس بدترین صورت اور کیا ہوگی کہ جو شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا مقدر ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ بارہویں علامت الو کے کان. اردو کے ایک مشہور شعر کا مصرع ہے جو کسی قوم کے اسباب زوال کی مختلف وجوہات میں سے ایک اہم وجہ بیان کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ الو کو ہمارے یہاں حماقت, خباوت اور حکارت کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے. ہما نامی پرندہ کسی کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کی خوش نصیبی کی انتہا, اور الو کسی کے گھر میں بسیرا کر لے تو بد نصیبی کی علامت قرار دیا جاتا ہے. لیکن اہل مغرب کے پیمانے جس طرح ہم مشرق کے باسیوں کے لین دین سے مختلف ہیں, اسی طرح ان کے ہاں عرف و دستور بھی ہمارے یہاں زبان و رواج سے الگ ہے. خصوصاً وہ اہل مغرب جو اسلامی دنیا کو تو قدامت پرستی کا طعنہ دیتے ہیں لیکن خود بدترین قسم کی توہم پرستی میں مبتلا ہیں. الو کی خلقت چونکہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اسے دن کو کچھ نظر نہیں آتا, رات ہوتی ہے تو اندھیرے اس کے لیے روشنی کا کام کرتے ہیں, اس لیے یہ دن کو ویرانوں میں بسیرا کرتا ہے اور رات کو اپنی سرگرمیوں پہ نکل کھڑا ہوتا ہے. بس اسی چیز نے اسے جادوگروں اور شیطانیت پرستوں کے لیے پراسرار اور منفی سرگرمیوں کے لیے کارآمد بنا دیا ہے. اس غریب کو تو یہ خبر بھی نہ ہوتی کہ اس کے بصری عیب اور تنہائی پسندی کو परे भी और वहमी सामदियत परस्तों ने कैसा रंग दिया है। तमाम परस्तों के नजदीक इसकी मकबूलियत, तासीर और तकद्दुस का अंदाजा इस अमर से बखूबी लगाया जा सकता है कि वो इसे या इसके मुख्तलिफ आज़ा को जादू टोने में तासीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे मावराई ताकत के उसूल का जरिया समझते हैं। अमेरिका जैसे महज़ब मुल्क में इन वहमी तसव्वुरात की कार फरमाई इस हद तक ऊंची है कि अमेरिका के डॉलर के एक कोने पर छोटा सा उल्लू यानी उल्लू का पट्टा जाली से झांक रहा है। अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब के मोनोग्राम के में एक दरमियाने साइज का उल्लू पूरी शानो शौकत से हिमाकत के साथ बराजमान है, जबकि वॉशिंगटन डीसी की इमारत का आर्किटेक्चर फिजा में मुलाहिजा किया जाए तो एक देवहेकल उल्लू यानी ठीक ठाक किस्म का अजीम अल कब्जा उल्लू की आंखें मटकाए दिखाई देता है। अमेरिका में शैतान परस्तों का एक गिरोह है जिसने अपने क्लब बोहेमियन ग्रो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का तारुफी निशान ही उल्लू को करार दिया है। दुनिया में कुछ इमारतें ऐसी बन रही हैं जिनके बारे में अहले नजर की राय है कि वो उल्लू के कान और आंखों की छवि को मद्देनजर रख के डिजाइन की गई हैं। गोया कि अब उल्लू बेचारे के दो ही आजा हमारे मुजाक खेज और नामुबारक समझे जाते थे। लंबूतरे कान और जहानत से महरूम, हिमाकत से भरपूर गोल मटोल आंखें। खैर खैर से दोनों ही को मगरब में कदरों मंजिलत मिली और कम ही किसी और के हिस्से में आई होगी। शैतान परस्तों और दज्जालकारों की ये अलामत हमारे मखसूस उर्फ और रिवाज के बिना पर हमारे यहाँ कम इस्तेमाल होती है, लेकिन मगरब में इसका इस्तेमाल भी जोरों पर है। इसलिए हमने इसे जिम्मी और गैर मानरूफ निशानियों में शुमार किया है, वरना तो मगरब में उल्लू के पट्टे तो बाकायदा तौर पर इसकी पूजा करते हैं। इस पर बोहेमियन गिरोह पर लिखे गए मजमून में इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बैनुस सुतूर से सुतूर की तरफ 12 शैतानी अलामात का तذکرہ तो मुकम्मल हुआ, 10 असली और 2 जिम्मी। यह किस्सा हमने इसलिए छेड़ा कि इसकी सारी और दूसरी का मकसद क्या है। फिर सबसे बढ़कर ये कि इस शैतानी मुहिम का शिकार होने से हम कैसे बच सकते हैं। रहमान का बंदा होने की हैसियत से हम पर इस शैतानी कसम और दज्जाल के फितने के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं, या हम यूं ही खुद को, इंसानियत को शैतानी मुहिमात के सामने बेदस्त व हदफ बनता देखते रहेंगे। इन सवालात का जवाब हम इन सतूर के बैनुस सतूर में देते रहे हैं। अब मौका आ गया है कि इसकी तफसीली वजाहत करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले एक और सवाल नहायत जरूरी और अहम है। इस पर आपसे हसबे मकदूर गुफ्तगू करने के बाद हम इंशाल्लाह दर्ज बाला कलमात की तरफ लौट आएंगे। इन अलामात के फैलाने से दज्जाली कुव्वतों का मकसद कारीन के दिल में मजमून की इब्तदा से बल्कि उनवान पढ़कर ही कुदरती तौर पर एक सवाल पैदा होता है, यानी शैतानी कुव्वतों की तरफ से इन दज्जाली अलामात को फैलाने का क्या मकसद है। यहूदी मीडिया और सैवानी मनसूबा साज इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। पसे पर्दा रहकर इन मुतशाबिया अलामतों को दर्ज रिवाज देने की मुहिम से ये दुश्मन इंसानियत दज्जाली गिरोह आखिर क्या चाहता है। शैतान के पुजारियों और शैतान के सबसे बड़े हथियार और शैतानी कुव्वतों के सबसे बड़े हिमायत याफ्ता हरकारे दज्जाल अकबर के चेलों की तरफ से इन अलामात और निशानात को इशारों कनायों में फैलाने के दो बड़े मकसद हैं। पहला तबियाती और दूसरा मावराए तबियाती। एक का ताल्लुक जाहिरी असबाब से है, दूसरे का ताल्लुक बातिनी तासुरात से। हम भी साथ भर कोशिश करेंगे कि दोनों की आसान तशरीह कर सकें। नंबर एक, दज्जाल के लिए मैदान हमवार करना। पहला मकसद कुर्रे अर्ज के बाशिंदों, खुसूसन तरक्की याफ्ता ममालिक और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक में दज्जाल के खुरूज के लिए जहनों को हमवार करना, ताकि जब सरापा दज्जाल व फरीब इस फितना उज़्मा का जहूर हो तो महज़्ज़ब इंसानी दुनिया इस गैर महज़्ज़ब हैवानी शतौन गढ़ से नामानूस न हो, न इसे अजनबी और अपने एहसास और शऊर से दूर महसूस करे। इसके साथ मखसूस अलामतें इतनी मरतबा इनकी नजरों से गुजरी होंगी, कान में पड़ी होंगी, दिलो दिमाग में जगह बना चुकी होंगी कि इन्हें सब कुछ अपना अपना देखा वाला और शऊर एहसास के करीब महसूस हो। खासकर दो अलामतें जो दर हकीकत इंसानी अक्ल और उर्फ आम में ऐब समझी जाती हैं, मसलन अंदर को धंसी हुई या बाहर को उभरी हुई आंख, या इनसे नफरत की जाती है, मसलन सांप, सींग और खोपड़ियां वगैरह, या इनके जादुई और शैतानी पस मंजर की बिना पर लोग इनसे कराहियत महसूस करते हैं, मसलन जादुई आदाद या आग वगैरह। इन सब से आज की मुहज्जब और तालीम याफ्ता दुनिया ऐसी आशना और मानूस हो जाए और दज्जाल के खुरूज से पहले ही हर तरफ दज्जालियत का ऐसा चर्चा हो कि हर बड़ा छोटा इस फितने की हशर सामानियों को मामूल की चीज और इंसानियत के इस दुश्मन को बदीनों इंसान के लिए खैर ख्वाही का मुजस्सिम रूप समझने लगे। इसकी एक मिसाल हम दूसरी अलामत इकलौती आंख में दे चुके हैं। एक आंख को इतना मशहूर किया जा रहा है कि रफ्ता रफ्ता दो आंखें हसीनों का हुस्न और मैं जबीनों का अस्तारा नहीं बल्कि एक आंख हुस्न की अलामत और ताकत का मंबा समझी जाने लगेगी। यही वो दजलो फरेब होगा जिसका शिकार इंसानियत अपनी तारीख में पहले कभी नहीं हुई होगी। नंबर दो, शैतान से मदद हासिल करना। दूसरा मकसद पुरिसरार है और मावराए तबीयात से ताल्लुक रखता है। शैतान के चेले इन अलामात से ना सिर्फ ये कि शैतानी ताकत और शैतान की हिमायत हासिल होने का यकीन रखते हैं, बल्कि इसमें ऐसी शैतानी तासीर के कायल हैं जो शैतान की तवज्जो खींचती है और इसे खुदा की तरफ से बतौर आजमाइश और मोहलत दी गई है। गंदी ताकत को शैतान के पुजारियों के हक में इस्तेमाल करने की दरख्वास्त करती है। यूं समझिए जिस तरह मुसलमान मुकद्दस मुकामात की शबी या मुतबर्रिक कलिमात का अक्स अल्लाह की रहमत और इस की तरफ से नाजिल शुदा बरकत के वसूल के लिए शाया करते और फैलाते और आवेजा करते हैं, शैतान के चेले बिल्कुल इसी तरह इस लेन को खुश या मुतवज्जे करने के लिए इन अलामात को फैलाने और तशहीर करके लोगों को इनसे मानूस करने की कोशिश करते हैं, ताकि शैतान अपने औकात के अंदर रहते हुए इनकी नाजायज सफली ख्वाहिशात की तकमील में इनकी मदद करे और इसके बदले ये ज्यादा से ज्यादा दौलत और शोहरत हासिल कर सके, ताउल वसा हैवानी लज्जत और शहवत पूरी कर सकी। असल मकसद, इस सवाल के जवाब से फारिग होने के बाद हम इस तहरीर के असल मकसद की तरफ लौटते हैं। शर्करा तस्करा शर ही फैलाता है। यह खैर सिर्फ इस वक्त बन सकता है जब शर की तरदीद की जाए, हक का गुजर बातिल के सर पे जोर से मारा जाए, इसका बीजा निकल जाए। जब हमने ये समझ लिया है कि महज अंदाज काफियाना से नहीं, शवाहिद और कराइन की रूह से ही समझ लिया है कि इन पुरस्तार अलामात के पीछे असरार वगैरह कुछ नहीं, महज शैतान की रसवाई और बनी आदम से इंतकाम की दास्तान है, तो अब हमें जिस अलामत के बारे में यकीन हो मजमून के आगाज में कह दिया था, यानी यकीनी बात का एतबार है, फहमी शको शुबात की कोई हैसियत नहीं, तो जो यकीनी अलामात हैं इनसे बचना चाहिए, इंसानियत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक मुनज़्ज़म मुहिम के सामने इतना काफी न होगा। क्या हम हमेशा दिफा ही करते रहेंगे इस तरह, तो ये दुनिया अंधेरी वारदातों का शिकार होकर शैतान की बस्ती बन जाएगी। वाकया ये है कि हमें भी अल्लाह को राजी करने और या शैतानियत को धुतकारने और इसके आला कारों को नाकाम बनाने के लिए महज अल्लाह ताला की रजा की खातिर हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। अल्लाह की शान बहुत बुलंद है, वो बंदे के इस अमल से राजी होते हैं जो खलूस से भरा और मशक्क़त और आजमाइश का सामना करते हुए जगह और माहौल की मुनासिबत से अख्तियार किया जाए। फितनों के इस दौर में इंसानियत को फितनों से बचाने की कोशिश इंशाअल्लाह अल्लाह की कुर्ब और इसकी रजा हासिल करने का बेहतरीन जरिया होगी। इसके लिए हमें मरहलावार दर्ज झेल तरतीब इख्तियार करनी चाहिए, ताकि ना हम खौफजदा हों ना किसी और को मरूब और खौफजदा करें, हम हक के अलमबरदार हों और बिला खौफ झिझक अपना फर्ज अंजाम दें। इस सिलसिले में हम बिरादरान इस्लाम के खिदमत में चंद बातें अर्ज करेंगे कि गुजारिशात दरअसल फितनों के इस दौर में एक तरह का मरबूत और मुरतब लाए अमल है, जिसके मुताबिक जिंदगी का मामूल बनाने से इंशाअल्लाह अल्लाह फितनों से हिफाजत भी करेगा और अल्लाह की मोहब्बत और नुसरत भी हासिल होगी। दज्जाल 1 और 2 में इस तरह की तदाबीर बयान की जा चुकी हैं। यहाँ असलूब कुछ अलग है और नौइयत भी एक तरह से अलग इनफरादी भी है और इज्तिमाई भी। पहली और आखिरी बात, इस शैतानी मंसूबे और दज्जाली मुहिम के खिलाफ लाहे अमल के नुकात तरतीबवार कुछ यूं हैं। इसमें पहली और आखिरी बात पूरी बहस का खुलासा और जान है। पहली बात, सच्ची तौबा नहायत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें हर तरह के गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए। इस फितना सदा दौर में सच्ची तौबा और रुजू इलाही हमें आजमाइशों से महफूज रख सकता है। नेज अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अब तक बेखबरी में अगर किसी शैतानी इलामत को अपने लिबास जूते इश्तहार ये किसी दूसरी शक्ल में बढ़ता हो जबान से इसका इजहार किया हो तो अल्लाह पाक इसको माफ़ फरमा दे। आइंदा के लिए ऐसे अमाल की तौफीक मिल जाए जो इन शैतानी अमाल को धुतकारने और इनके खिलाफ जदोजहद का जरिया हो। शैतान का मकरो फरेब मकड़ी के जाले की तरह इंतहाई बूदा और इसके मनसूबे और चाल इंतहाई कमजोर है। दिल की तवज्जो से एक मरतबा अल्लाह की तरफ रुजू करें, इसकी किब्रियाई बयान करें। या लाहौल पढ़ने की देर होती है, ये वावेला करता हुआ सब मिट्टी डालता हुआ भागता है। मगरबी दुनिया तो वही है, इलाही की मुकद्दस व मुबारक तालीमात और इसके नूर और हिफाजती हिसार से महरूम है। इसलिए वह शैतानी कुव्वतों की यलगार के सामने बहती चली गई। अहले इस्लाम को अल्लाह ताला ने बाबरकत किताब सच्ची तालीमात दी हैं। मुस्लिम उम्मा के पास अल्लाह ताला की किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन असल हालत में मौजूद हैं, जिनमें आखिरी ज़मानों के फितनों की वजाहत खूब तफसील से बयान की गई है। इसे चाहिए कि ये सारी दुनिया के लिए खैर और सलामती की दाई बन जाए और मगरिब के शैतान गुजीदा और सितम रसीदा इंसानों को गुनाहों और गुमराहियों के गढ़े से निकालने की कोशिश करे, जिसमें शैतान के पैरोकारों और दज्जाल के आलाए कारों ने इन्हें धकेलने की कोशिश जारी रखी हुई है। जब अल्लाह के फजल से और इसकी तौसीक से सच्ची तौबा नसीब हो जाए तो इसके बाद इस पे कायम रहने के लिए 2 काम कीजिए। नंबर 2, इस्लाही हलके से जुड़ी। तौबा के बाद अगले काम यह है कि अपने इल्म और अमल को शरीयत और सुन्नत के करीब तर लाने की जुदोजहद करें। इसका आसान तरीका है, ऐसे इल्मी और इस्लाही हलकों में बैठें और उनसे जुड़ जाएं जहां अहले हक, उलमाए कराम और मशायख अज़ाम शरीयत और सुन्नत का नूर फैला रहे हों और फितनों के इस दौर में अपने पैरों तले आने वाले उम्मतियों के ईमान की यूं हिफाजत कर रहे हों जैसे मुर्गी अपने नादान और कमजोर बच्चों की। एक नौउम्र पादरी से राकिमुल एहराफ ने पूछा, जब आप कुफर की सफ में थे और मुसलमानों को मुर्तद बनाने की कोशिश कर रहे थे तो मुसलमानों में सबसे ज्यादा किस तबके को अपने काम में रुकावट समझते थे या हमारी इस तहरीक से खतरा महसूस करते थे? उन्होंने बर्जस्ता कहा, 2 किस्म के मुसलमानों को, एक वो जो मुसलमानों को मस्जिद से जोड़ते हैं, जो मस्जिद से जुड़ जाता है वो अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है, और हम तो लोगों को अल्लाह और इसके रसूल से दूर करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो जहाद की बात करते हैं, यानी अमलन जहाद करें या न करें लेकिन सिर्फ जिहाद की जहाज को फर्ज ऐन बताएं, लोगों को ये समझाएं कि कत्ताल फी सबीलिल्लाह शरीफ फराइज में से एक है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, इनका कोई इलाज हमारे पास नहीं। कारीने मोहतरम, दरअसल इन इल्मी और इस्लाही हलकों जो मस्जिद और मदारिस और खानकाहों में कायम होते हैं से जुड़ने से बहुत सी बरकत हैं। एक अहम और अजीम बरकत यह होती है कि इंसान की सबसे कीमती मता यानी इसका ईमान महफूज रहता है। इसको मसनून आमाल से शनासाई पैदा होती है, मसनून जिंदगी अपनाने का शौक और हिम्मत होती है। ये ऐसी चीज है जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आप शर फितना और शैतानी मुहिमात के बातनी और नफ्सियाती जरासीम से महफूज रहेंगे। नंबर 3, जदीदियत के झांसे में न आइए। इसके बाद जदीदियत के फितने से बचने की कोशिश कीजिए। नई चीजों से मुतासर होने के बजाय अपने इस कदीम और असली दीन और इसके मुबारक तालीमात से चिमटे रहने की फिक्र करें, जो बरहक और सराकर सदाकत है। जदीदियत का लेबल लगी चीज़ों, खुसूसन मगरिब से आई हुई चीज़ों और मगरिब ज़दा लोगों से बचिए, इनके नज़रिए और अफकार से और इनकी तहजीब और रिवायात से भी। ये लोग बातों बातों में इंसान को फितने में मुब्तला कर देते हैं। मसलन मगरिब ज़दा दीनी स्कॉलर समय मॉडर्न इस्लाम समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि मॉडर्न इस्लाम कोई चीज़ नहीं, इंसान या तो मुसलमान है या कुछ और है। बीच का दोगला रास्ता निफाक है। इसी तरह नॉवेल, कार्टून और फिल्मों के जरिए अहले मगरिब ने अपने दज्जाली नजरियात हमारे जहनों में उंडेलने की कोशिश करते हैं। ये वो जादुई इतकादात की तरवीज के लिए फर्जी मखलूक और वहमी शख्सियात की किस्से कहानियां लिखते हैं, इनसे फिल्में बनाते हैं। उड़ने वाला अजदहा, सींगों वाला नाकाबिले शिकस्त हैवला, परों वाली कलाई मखलूक, निचला दर घोड़े जैसा और ऊपर का इंसानों जैसा, मावराई ताकतों की हामिल पुर इसरार फर्जी शख्सियात, ये सब कुछ दरअसल इंसान को जहनी तौर पे मरूब करने के, नफ्सियाती शिकस्त और टूट फूट का शिकार करने करने के बाद इस पर काबू पाने की कोशिशें हैं। लिहाजा खुद को और अपने मुतालिकीन को फर्जी नॉवेल, कहानियां पढ़ने, फिल्में और कार्टून वगैरह देखने से बचाइए। नेज ऐसे नीम मजहबी और नीम मगरबी स्कॉलरों के बयान न सुने जो खुद को सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असफाए हसना से महरूम हैं, तहरीर के नाम पर जदीदियत के फितने अजीम का शिकार हैं, और इसके रास्ते से वो हमें अबाजियत और फिर दज्जालियत की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि इसमें शक नहीं कि इस तरह की मखलूक से मुतासर इंसान तारीखी के अलमबरदार और नामानूस किस्म की फितना बाज जो फितना परवाज मखलूक दज्जाले अकबर का आसान तरीन शिकार है। नंबर 4, शरीयत और सुन्नत को तर्ज हयात बनाइए। जो अल्लाह का कुर्ब चाहता है वो शरीयत और सुन्नत को तर्ज हयात और शैतानी कामों और दज्जाली फितने से अपने आप को बचाए। इन दोनों का फितना शर और बातिल परस्ती का फितना है। इसका इलाज खैर को फैलाने और खुदा परस्ती को आम करने में है। जहाँ शरीयत का हुक्म जिंदा होगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल होगा, वहाँ शैतान शिकस्त खाएगा और वावेला करते हुए भाग जाएगा। जहाँ इंसान गुनाह करेगा, हैवानात की तरह नफ्स परस्ती में मुब्तला होगा, वहाँ शैतान का काम आसान होगा। इंसानियत फितनाए दज्जाल के फंदों में फंसती चली जाएगी। अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के लिए ये इम्तिहान का वक्त और खैरत दिखाने का लम्हा है कि वो अपने खालिक हकीकी और मालिक रब के दीन और अपने मोहसिन और मुशफ़िक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हिदायत और इस्तेकामत के लिए क्या कुछ करते हैं, और अपने और सारी दुनिया के दुश्मनों और इनके चेलों के मुकाबले में कितनी मशक्क़त उठाते हैं और इस्तेकामत का मुजाहरा करते हैं। नंबर 5, मसनून अमाल और मसनून दुआओं का इस्तेमाल कीजिए। अलावा अजीम दज्जाल का फितना शैतान का अजीम फितना है। इससे दफा के लिए रहमानी हिसार में आना जरूरी है। रहीम और रहमान जात की मदद और इसकी हिफाजत के हिसार में आने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल, मुतबे सुन्नत मशायख कदीम की सोहबत और मसनून अमाल ही वाहि जरिया है। सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात और आखिर के रुकू में और इसके बारे में हदीस शरीफ में बताया गया है कि फितना दज्जाल और इसके जहरीले असरात और जरासीम के खिलाफ मजबूत तरीन हिसार और मुअत्तर तरीन हथियार हैं। इनका सुबह शाम विट कीजिए। इसी तरह इन दुआओं का इस्तेमाल कीजिए जिन्हें मुहद्दिसीन की असलाह में ताऊजात कहा जाता है, यानी जिनमें आउजू का लफ्ज आता है। इनके जरिए हमारे मोहसिन हकीकी जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों और नागवार चीज़ों से पनाह मांगने की तलकीन और तालीम दी है। ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आउजु बिका मिन आलमा व हजाना व आउजु बिका मिन इज्जिल व कसाइल व आउजु बिका मिन अल्जिन्नी वल بقلي وأعوذ بك من غلبات الدين والقهر الرجال نيس. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنات المسيح الرجال. صحيح بخاري كتاب الدعوات باب نمبر 2 پیج نمبر 944. آخری بات نظریہ جہاد کو زندہ کیجیے. آخری بات یہ ہے کہ منحوس شیطانی علامات اور مکروہ دجالی نشانات کی روک تھام کیجیے. اس کی جگہ اللہ کی تسبیح اور تقدوس کو عام کیجیے, رحمانی شعار کا احترام کیجیے, گناہ چھوڑیے اور چھڑوانے کی ترغیب دیجیے. دجالی فتنے کی واحد حل جہاد فی سبیل اللہ کے عظیم فرض کی ادائیگی کی فکر کیجیے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حلال کمائیے. اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہیے. نظریہ جہاد کو زندہ کیجیے اور قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں جڑ جائیے. جان مال زبان دعامے در میں سخنے کسی نہ کسی شکل میں فرض قتال فی سبیل اللہ ادا کیجیے. اس سے غافل رہنا اجتماعی خودکشی ہے. یہ ذلت والی زندگی قبول کر کے حسرتناک موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. لہذا ہر حال میں اس میں کسی نہ کسی شکل میں اس سے جڑے رہنا ضروری ہے. یہ کسی بھی اشکال کی بنا پر ساکت نہیں ہوتا. روز قیامت یہ سوال نہیں ہوگا کہ نیکی کی جستجو میں کتنی کامیابی حاصل کی. سوال یہ ہوگا نیکی پھیلانے اور بدی کے خاتمے کے لیے اپنی بکتور بھرپور کوشش کیوں نہیں کی. ہم سب کو وہ لمحہ یاد رکھنا چاہیے جب ہم سے یہ سوال ہوگا, لازمند ہوگا اور سر عام ہوگا. پھر ہمارے سامنے خیر کے دائیوں اور اسلام کے سپاہیوں کو اعزازات و انعامات ملیں گے, اور خیر و شر کے معرکے میں پھسڈی بند دکھانے والوں کو حسرت اور ارمان کے علاوہ کوئی ان کا چارہ گر نہ ہوگا. اب اس وقت حسرت اور ندامت سے بچنے کے لیے آج کی مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. فتنہ عظیم کے مقابلے میں قلیل عمل کا اجرا انشاءاللہ عظیم اور ہمارا تصور سے بھی بالاتر ہے. بلیک واٹر سے آئی ٹی فیشل واٹر تک دجالی ریاست کے قیام کے لیے فطری قوتوں کو مسخر کرنے کی ابلیسی کوششیں. فارسی کا مشہور شعر ہے, خاموش مار روادات کا در گفتن نمی عید, یعنی خاموشی کی ایک ہی زبان ہوتی ہے جو بولتی زبانوں سے زیادہ معنی خیز اور اثر انگیز ہوتی ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین اور روثا اور عمرہ کی بڑی محفلوں میں خاموش بیٹھے رہتے تھے. کسی نے پوچھا, حضرت آپ بولتے نہیں, کیا حاضرین کو فائدہ؟ فرمایا, جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ سمجھا وہ ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہ سمجھے گا. سیلاب جب تباہیوں کے دور کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے تو احباب کی ایک محفل میں عزیزم سید عدنان کا کخیل نے پوچھا, یہ سمجھ نہیں آیا کہ سیلاب عذاب ہے تو سرحد اور جنوبی پنجاب میں زیادہ کیوں آتا ہے؟ یہ دونوں علاقے تو دینداری کے حوالے سے معروف ہیں. کچھ دوستوں نے سازش کی طرف دیکھا کہ کچھ بولے. میں تو خاموش رہا. ایک اور صاحب نے اس سوال کے جواب پر دوسرے سوال کی تھپکی لگائی. ہاں, یہ لوگ سخت ابتلاء میں ہیں کہ پنجاب کے وہ بڑے شہر جمعہ رمضان میں بھی اپنی کارستانیوں کے حوالے سے معروف ہیں, امن و امان سے ہیں. اب کچھ بولنا ضروری تھا لیکن یہ عاجز فقط اتنا کہہ کے خاموش رہا. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بعد میں شاہ صاحب کو الگ کر کے کہا, یہ سیلاب ہیتی کے زلزلے اور جدہ کے سیلاب کی طرح مصنوعی ہے. ان علاقوں کے بعد آہستہ آہستہ اور آگے بڑھے گا, پھر ستم گر نہ مہربان خیر خواہ مہربانوں کے روپ میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. شاہ صاحب نے دجال ون کا متعلقہ حصہ پڑھ رکھا تھا, پھر انہیں عاجز نے مختصر طرز گفتگو سے آگاہی بھی دی تھی. مزید کچھ نہ پوچھا, البتہ استفار بری نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے یہ کہہ کر گفتگو ختم کر دی. ان قریب نیٹ پر پھر اخباروں میں یہ بات آنی شروع ہو جائے گی, لیکن حسب معمول نظر انداز کر دی جائے گی. اس واقعے کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. इस अरसे में हम अहले वतन के कुछ दर्द समेटने और मकतूर भरी खदमत में मसरूफ रहे और बवजह मुख्तलिफ नामों से हमारे मजामीन छपते रहे। इंतजार था कि कहीं से जमूत टूटे तो हम कुछ बोलें, वरना फकीर की कौन सुनता है।